ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के इस सवेरे के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद से 26वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। राजा पुरंजन का शिकार के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। श्लोक क्रमांक 18। नारद उवाच पुरंजन स्वमहिषिं निरीक्षावदूतां भुवि तत्संगो मतितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। पुरंजनस्वमहिषिं निरीक्षावदूतां भुवि तत्संगोन्मतितज्ञानो वैक्लव्यौ परमं ययौ। पुरंजन स्वमहिषिं निरीक्षावदूतां भुवि तत्संगोन्मतितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। तत्संगोन्मतितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारद उवाच स्वमहिषिं निरीक्षावदूतां भुवि तत्संगोन्मतितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। मताजीस नारद उवाच पुरंजनस्वमहिषिं निरीक्षावदूतां भुवि तत्संगोन्मतितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारद उवाच पुरंजनस्वमहिषिं निरीक्ष्यावदुतां भुवि तत्संगोत्मतितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा, पुरंजन, राजा पुरंजन स्वमहिषिम अपनी रानी को निरीक्ष्य देखकर अवधूताम साधु की तरह भुवि पृथ्वी पर तत् उसके संग साथ से उन्मथित प्रोत्साहित ज्ञान जिसका ज्ञान वैक्लव्यम मोहग्रस्त परमम परम ययौ हो गया। अनुवाद और तात्पर्य। महर्षि नारद ने कहा, हे राजा प्राचीन बरही, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। तात्पर्य, इस श्लोक में अवधूताम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की सूदी बुद्धि नहीं रहती। चूंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित जमीन पर लेटी हुई थी, इसलिए राजा पुरंजन को अति अधिक दुख हुआ। दूसरे शब्दों में उसे इसका पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की और स्वयं जंगल में जाकर पशु वध में व्यस्त रहा। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा करता है या बुद्धि से अलग हो जाता है, तो वो पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वो मोहग्रस्त होता है और पाप कर्मों में लगता है। जब उसको इसकी अनुभूति होती है तो वो पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है। हरि हरि विफल जनम गोनाइनु मनुष्य जनम पाया राधा कृष्ण ना भोजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। वे कहते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पीने के लिए पछतावा हो रहा है। कृष्ण भक्त न बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विष पान करता है। सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या कहें कि जब वो अपनी बुद्धि खो देता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आप सब लोग सवेरे की कथा में उपस्थित रहे। पुरंजन महाराज की कथा चल रही है और नारद मुनि उनको उपदेश कर रहे हैं। उपदेश मतलब ऐसी एक कहानी बता रहे हैं जिसके द्वारा राजा के अहंकार को ठेच न पहुँचते हुए जो संदेश देना है उनको, वो उन तक पहुँच सके। इसलिए इतनी लंबी कहानी बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही ये कैसे अलंकारिक रूप में ये कथा कही गई है, इसलिए उसका पूरा वर्णन देते हैं। जो पंचदेश में वो जा रहे हैं उसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि पंच इंद्रियों के जो विषय हैं उसका एक वन जो है यानी भौतिक दुनिया, उसमें वो सारे इंद्रियों के साथ जा रहे हैं उसका भोग लेने के लिए। जो उनके रथ के पहिए है वो एक धर्म का पहिया है और एक पाप कर्म का पहिया है। जो लगाम है वो मन है, सारथी जो है वो आत्मा है। ऐसा विस्तार रूप में प्रभुपाद जी उसका लाक्षणिक वर्णन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत जो है इसमें ये कथा आती है, यानी कि वो शुद्ध भक्ति से जुड़ी हुई है इसलिए वो आती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि जब परीक्षित महाराज को कुछ उपदेश करने का समय आता है तो सुखदेव जी प्रत्यक्ष रूप में उपदेश कर देते हैं। जब अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष उपदेश दे रहे हैं, कोई कहानी नहीं बता रहे हैं उसके लिए। कहानी तो बता रहे हैं लेकिन डायरेक्ट उपदेश कर रहे हैं। लेकिन पुरंजन महाराज को इतनी लंबी कहानी बता रहे हैं और अंत में पुरंजन महाराज को ये पता चलता है कि ये तो मेरी कहानी है, मुझे ऐसी तरह से बताई गई है कि समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक्चुअली ये मैं ही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम गुरु जी के सामने बैठते हैं या किसी वरिष्ठ भक्तों के संतों के सामने बैठते हैं और हमारे मन में जब किंतु परंतु अटैचमेंट अहंकार इस प्रकार की भावनाएं होती है तो फिर वो गुरु महाराज को या संतों को अपने को उपदेश करने में मुश्किल हो जाता है। तो उनको वही बात फिर घुमा फिरा के आपके अहंकार को ना ठेस लगते हुए कैसे अंदर छिद्र करना है अहंकार के बीच में और कैसे अंदर जाके आत्मा को उपदेश देना है, बहुत कष्ट होता है। पूरा अध्याय इस कहानी में गया, इसके आगे फिर वो और भी कहानी आती है, शी गोट और ही गोट उसकी भी कहानी आती है। तो उसके एंड में उनको समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है, क्या उपदेश किया जा रहा है, कि सारे इंद्रियों के वश में जिसकी कहानी बताई जा रही है वो स्वयं मैं हूँ, जिसका पतन हो रहा है वो भी मैं हूँ, जिसने ज़िंदगी का इतना समय व्यर्थ गंवा दिया है वो भी मैं ही हूँ। ऐसे कई प्रकार की अनुभूतियाँ उसको बाद में होती है। इसलिए हमारे वरिष्ठ भक्तों को और हमें गाइड करने में सुविधा अगर हमको देनी है तो हमको हमेशा नम्र होकर उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे मन में अहंकार होता है उतना हमारे वरिष्ठ जनों को हमको उपदेश करने में कठिनाई होती है समझाने में, और जितने हमने हमारे मन में गर्व नहीं होता है और जितना नम्रता होती है उतने उनको अपने बताने में बहुत आसानी होती है। और अगर भक्त बहुत नम्र होता है तो हमें वरिष्ठ भक्त डांट भी देते हैं, अगर उनको डांटने के लिए मन में संकोच नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने उनके लिए एक अच्छा वातावरण निर्माण करके रखा है अपनी चेतना में, जिसके द्वारा वो अपने को अच्छा उपदेश कर सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज भी अगर कोई गृहस्थ भक्त है और वो बहुत धनी है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे पद पर है और उसको थोड़ा सा अपना गर्व है तो वो भी उनको डांटते नहीं है, तो उसको थोड़ा सा नम्रता से अच्छी तरह से मृदुर बातों से समझा देते हैं उनको। लेकिन कोई ब्रह्मचारी है, वो सब कुछ अहंकार छोड़कर मंदिर में आया है और वो बर्तन भी मांझता है और लादी भी पहुँचता है, बड़ा पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी विरक्त होकर नम्र होकर आया है, तो हम उनको डांटते हुए देखते हैं उनको। तो जिसको डांट रहे हैं वो एकदम पतित भक्त हैं और जिनको बड़े आदर से समझा रहे हैं वो उन्नत भक्त है, ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज हम लोगों को बहुत जल्दी प्रगति करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन हम जितनी सुविधा उनको दें नम्रतापूर्वक उतनी वो हमको जल्दी फास्ट ट्रेन में बिठा सकते हैं। लेकिन अगर हम अहंकार के ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है, यही यहाँ पर भी हो रहा है। तो कभी भी हमें राजा पुरंजन जैसी स्थिति में, मतलब उनकी स्थिति अच्छी है क्योंकि नारद मुनि स्वयं उनको उपदेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अहंकार गर्व वाली स्थिति में हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको प्रगति करनी है तो हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन अपने अहम को बनाए रखने के लिए नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए। ये बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात। अगर हम लोग हमारे दुनियादारी का जो अहंकार है वो सब लेकर अगर भक्ति में आ जाते हैं तो न केवल हमको कष्ट होता है लेकिन बाकी लोगों को भी कष्ट होता है। इसकी वजह से कोई बहुत टफ भक्त अगर आ जाता है समुदाय में तो वो खुद के साथ बहुत लोगों को परेशान करता है, और कोई नम्र भक्त आता है तो खुद के साथ में बहुत लोगों का लाभ करता है, वो उसको देख बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो हमको तय करना है कि हमारे भक्त समुदाय में हमें एक डिस्टर्बेंस के रूप में आना है कि हमें एक सहायता के रूप में, सहयोग के रूप में आना है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महान संत कोई भक्त समुदाय आरंभ करता है तो उसका दिव्य उद्देश्य होता है और कई प्रकार के लोग उसमें भाग लेते हैं। लेकिन जब कोई अहंकारी व्यक्ति, बहुत पावरफुल व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा धनी ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो वो अगर नम्र भाव में नहीं रहता है तो वो समुदाय में बहुत समस्याएं खड़ी करता है। तो तात्पर्य मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को जिस प्रकार से नारद मुनि समझा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नारद मुनि राजा के अहम को समझते हुए धीरे धीरे समझा रहे हैं उसको। अभी वो जंगल में गए हैं और उन्होंने ऐसे लिखा है कि बहुत पशुओं का वध किया है अनेक बाणों से, और जैसे इंद्रियों का भोग मन तृप्त होने तक आदमी करता है वैसे वो तृप्त होने तक जानवरों का वध करता है, और फिर लौट के आता है, थक जाता है, फिर भोजन करता है, फिर उसकी इंद्रियां फिर उत्तेजित हो जाती हैं, फिर उसको अपनी पत्नी की याद आती है। जंगल में गया था, पंचदेश में, पंचवन में, वो भी भोग के लिए गया था। घर पे आया, थक गया तो उसने स्नान आदि तेल वगैरह लगाकर मसाज करके स्नान लिया, वो भी भोग की बातें हैं। फिर अच्छे अच्छे भोजन पाया, वो भी जिह्वा के भोग की बात है। फिर ये सब इंद्रियां ऊपर से तृप्त हो गई तो उपस्थ इंद्रियों की भावना जागृत हो जाती है, तो पत्नी की याद आती है, पत्नी की तरह अभी उनका संग करना है। तो ये भौतिक जीवन है, कभी ये इंद्रिय तो कभी वो इंद्रिय, कभी इसका भोग तो कभी उसका भोग, जो पुकारता है उसको भोजन खिलाए देना है, और कौन सा इंद्रिय कब पुकारेगा कोई भरोसा नहीं है। पांच कुत्ते घर पे रखेंगे तो कौन सा कुत्ता कब खाना मांगेगा कुछ भी भरोसा नहीं है, तैयार रहना पड़ता है तो भोगते रहेंगे और परेशान करेंगे। इस तरह से हमारी इंद्रियां हैं, और हम ऐसे इंद्रियों को जो हमारे ऊपर आतंक करते हैं, एक्चुअली डिमांड कर करके आतंक हो जाता है हमारे ऊपर, लेकिन ऐसे इंद्रियों को हम इतने प्रेम से पालते हैं, हर उनके इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत गंभीर उलझन में फंस जाता है। तो पत्नी के पास आया तो देखा कि अरे ये हमारी भोग की जो वस्तु है, थोड़ी देर के लिए हमने उसको निग्लेक्ट करके रखा था, दुर्लक्ष किया उसके ऊपर, हाँ लिखा है ना यहाँ पर, दुर्लक्ष करके रखा है। तो फिर वो अरे ये भी तो मुझे चाहिए, बाकी सारे भोग तो हो गए लेकिन ये भोग नहीं मिलने को भी मुश्किल हो जाएगी तो मनाना पड़ेगा। तो आगे लिखते हैं कि वो उनको मनाते हैं, गोद में बिठाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो आगे भोग लेना है, वो बहुत भोग महत्वपूर्ण है, बाकी सारे भोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके पीछे लगना है। कितनी ज़िंदगी की जो ऊर्जा है, शक्ति इसमें खर्च होती है, इंद्रियों को संतुष्ट करने में, इंद्रियों के विषयों को संतुष्ट करने में, इंद्रियों के विषय वाले व्यक्तियों को संतुष्ट करने में, इतनी सारी मानव जीवन की ऊर्जा जो भगवान ने हमको दी है इस शरीर में, इतनी सारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, और लक्ष्य से हम उतनी दूर हो जाते हैं। जितना समय लगता है इंद्रियों को संभालने में, उतना समय में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम लोग इतने आसक्त हैं। इसलिए साधु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। साधु जब जीवन में हमारे आते हैं तो वो बड़े ही करुणा से, बड़े ही कुशलता से, बड़े ही बुद्धिपूर्वक हमारे अंदर जो रोग है उसको काटने का प्रयास करते हैं। जैसे होता ना कोई शल्य चिकित्सक, सर्जन, वो बड़े ही कुशलता से आपको बेहोश करके कुछ समय के लिए, फिर आईवी लगा के, फिर दवाई दे के, सब कुछ संभाल के, आपका मेंटेनेंस जो है हेल्थ का मेंटेन करके, फिर वो ट्यूमर को निकाल देता है, और बाद में आगे भी तकलीफ ना उसको वो गांठ वांट मार देता है उधर के, आगे जाके फैल ना जाए। वैसे हमारे संत होते हैं। संत का और एक शब्द है साधु, साधु यानी जो काटता है, हाँ जो क्या काटता है वो, जो हमारा जो आसक्ति है जिस, तो हम दुनिया में से इतने कर्रे रूप में चिपक गए हैं, उसको वो काटते हैं और वो काटते हुए दर्द होता है। डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन आपका बेहोशी में किया फिर भी होश आने के बाद दर्द होता है जहाँ पर काटा हुआ है तो दर्द तो होता ही है, हाँ थोड़ा सा कम होता है लेकिन दर्द होने है, होना ही है, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी इंद्रियों के कारण हमारे ऊपर इतना सारा जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ चिपकी हुई है हमारे ऊपर। और साधु लोगों के पास ऐसे एक, जैसे वैद्य के पास वो नाड़ी पर देखने की उतनी शक्ति होती है, वैसे साधुओं के पास आपको देख के वो पहचानते हैं कि आपका रोग क्या है। इसलिए उनका संग बहुत आवश्यक है, उनका संग में अपने आप को समर्पित करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब तक हम पेशेंट अपने आप को सुपुर्द नहीं करता है, ये प्रश्न पूछता है कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो क्या, ये ऐसा ऑपरेशन ऐसा क्यों कर रहे हो, वो इस तरह से क्यों नहीं करते, उसके बाद में कौन सी दवा देंगे आप, ये दवा क्यों नहीं देते, वो क्यों दे रहे हैं, ऐसे 50 सवाल पूछेंगे तो डॉक्टर का इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है कि मैं जो चाहता हूँ उसके लिए जो सबसे कल्याणकारी है वो मैं करने वाला हूँ, लेकिन उसके प्रति उसको इतनी शंकाएं हैं, इतनी संदेह है उसके मन में, तो कहता है भाई साहब एक काम करो आप किसी दूसरे डॉक्टर को मिलो वो अच्छा रहेगा, उधर भी जाके तंग करेंगे ऐसे प्रश्न पूछ के, तो बोलेगा और किसी के पास जाओ। इस तरह से क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हमारा कल्याण से हम दूर हैं, अभी तक कल्याण हो रहा हो सकता है लेकिन हम ही उससे दूर अब ढकेल रहे अपने आप को और समय भी व्यर्थ कर रहे हैं इसके अंदर। इसलिए डॉक्टर को ढूंढने तक हमारा प्रयास होना चाहिए, एक बार सही डॉक्टर ढूंढ लिया फिर बाधे पूरे विश्वास के साथ में हमको उसके साथ पेश आना चाहिए। उस तरह से श्री गुरुदेव को गुरुदेव बनने बनाने तक हमको प्रयास करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करके परखना वरखना जो भी कुछ है, जांचना जो भी जांच हमारे जो भी कुछ है, जब तक हम ये विश्वास ना आ जाए कि हम वो शुद्ध भक्त हैं तब तक ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्त है और हमने शरणागति ले ली उनसे दीक्षा लेकर, बाद में भी सवाल कर रहे हैं, बाद में डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, तो नुकसान गुरुदेव का नहीं होता है, नुकसान हमारा होता है। इसलिए श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है और श्रद्धा के साथ सत्संग होना ज़रूरी है, साधु संग होना ज़रूरी है। वो हम कहते हैं ना लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ये तब होता है जब श्रद्धा होती है, नहीं तो हमारे हजारों घंटे साधु के साथ बैठते हैं क्या फर्क नहीं पड़ता है कुछ क्योंकि श्रद्धा में प्रॉब्लम है, श्रद्धा की स्थिति में समस्या है। श्रद्धा हमारी बहुत प्रामाणिक है और सिंसियर, यानी प्रामाणिकता से हम श्रद्धा रखते हैं, पूरी तरह से नम्रता के साथ विश्वास के साथ रखते हैं, तो वो श्रद्धा हमें, उस श्रद्धा के साथ जब सत्संग करते हैं तो वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है आध्यात्मिक उन्नति में। हमारे भगवान के मिलने के रास्ते में हम कई बहुत तेज़ प्रगति कर सकते हैं, तो ये संतों की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए मनुष्य जीवन में अगर संत संग नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो जानवर से भी बेकार है, क्योंकि जानवर के जीवन में उसकी सुविधा नहीं है तो ठीक है उनको संत संग नहीं मिलता है, क्या करें, वो सुविधा ही नहीं है उनके पास, उनके यंत्र में सुविधा नहीं है, और हमारे यंत्र में सुविधा है फिर भी हम नहीं ले रहे, इसलिए हम ज़्यादा दुर्भाग्य हैं जानवर से। और जानवर का लाभ क्या है, जानवर जो भी करता है उसका कर्म उसको लगता नहीं है, और हम इस अज्ञान में जो भी करते हैं उसका कर्म हमको लगता है, इसलिए हम ज़्यादा दुर्भाग्य हैं। क्योंकि जानवर का शेर भी किसी को मार के खाता है तो उसको पाप नहीं लगता है, वो उसका स्वभाव है, उसको भगवान कर्म का हिसाब में डालते नहीं है। वो किसी से प्रेम करता है, किसी मालिक से प्रेम करता है तो भी उसको कर्म लगता नहीं। लेकिन मनुष्य को जीवन में अगर वो भक्त के संग में नहीं आता है, साधु के संग में, तो वो बाकी जो भी उसके जीवन में होते रहता है उसको बार बार लगातार कंटिन्यूसली बांधते रहते हैं। इसलिए जब तक श्रद्धा और सत्संग नहीं है तब तक मनुष्य जानवर से और निचली योनि से भी निचला है, पतित है। उसके मनुष्य जीवन का जो पोटेंशियल, जो शक्ति उसके अंदर भगवान ने दी है, वो तब उसको उसका लाभ मिलता है जब वो नम्रतापूर्वक सत्संग में आता है। तब उसके अस्तित्व में, उसके मनुष्य जीवन के स्थिति में जो शक्ति गुप्त रूप में रखी गई है भगवान को मिलने वाली, उसको वो जागृत हो जाती है। इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी बुद्धि है या बुद्धि नहीं है, बहुत सारा धन है नहीं है, बहुत सारा प्रभाव है या नहीं है, दोनों स्थिति में एक चीज़ होना जरूरी है, नम्रता से पूर्वक हमको संत के संग में अपने आप को सुपुर्द करना है। और क्या कहना है, अपना रा बोली, कृपा करके अपना बना लो। इसके विषय में ठाकुर भक्ति सिद्धांत का जो भाव था वो परम श्रेष्ठ भाव था। अब देखिए स्थिति कैसी है, ठाकुर भक्ति सिद्धांत जो है वो ऐसे कहते हैं वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, मतलब क्या होता है, चलते फिरते शास्त्र, कुछ भी पूछ लो किसी भी शास्त्र से, ऐसे मुखोद्गत था उनका। 7 साल में भगवद गीता और 13 साल में श्रीमद् भागवत के साथ सारे उपनिषद ग्रंथ उनके मुखोद्गत थे। कहीं से भी कुछ भी पूछो तुरंत जवाब मिलेगा, वो भी ऐसा नहीं रटा हुआ जवाब नहीं, इतना उनके मन में अनुभूतियां थी, साक्षात्कार था। तो इतने विद्वान थे वो इतनी छोटी उम्र में, और किसके उनका वंश देखो, ठाकुर भक्ति विनोद के पुत्र थे वो, एक महान संत तो थे ही वो, सब पिताजी उनके, लेकिन गवर्नमेंट के में ब्रिटिश गवर्नमेंट में मजिस्ट्रेट भी थे, मतलब दोनों तरफ से श्रेष्ठ थे वो, बहुत महान व्यक्ति थे। घर में बाकी भी भक्त लोग थे, पत्नी भी माता भी भक्त थी उनकी। ऐसे व्यक्ति जो इतने श्रेष्ठ विद्वान थे, सब तरह से श्रेष्ठ थे वो, उनको उनके पिताजी ने कहाँ भेजा, गौर किशोरदास बाबा जी के पास भेजा, जो एकदम हमारे लोकल भाषा में अंगूठा छापते, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, एकदम अनपढ़ निरक्षर। तो वो गौर किशोर बाबा जी भी उनको बोल रहे हैं कि मेरे पास क्यों आ रहे हो आप तो पंडित हो, इतने विद्वान हो, मुझसे क्या मिलेगा आपको, मैं तो कुछ एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं, जाओ आप जाओ मेरे पास मत आओ, तुम्हारा काम मेरे पास नहीं होगा, किसी विद्वान संत को ढूंढो आप, मेरे पास आपका काम नहीं होगा। चले जाते हैं, फिर पिताजी कहते हैं घर पे नहीं आना है आपको दोबारा जब तक इनकी दीक्षा नहीं मिलती है। दोबारा गए, फिर भी उन्होंने कुछ लंबा व्रत दिया उनको कि ये इतना व्रत करके आ जाओ तो फिर मैं सोचूंगा आपके बारे में। तो झट से उसको पूरा भी करते हैं, समय के अंदर पूरा कर देते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं फिर भी मैं आपके योग्य नहीं हूं। तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी फिर तीसरी बार जब जाते हैं तो फिर मना करने पर नीचे के एक टील पर चढ़कर गंगा में कूद कर आत्महत्या करना चाहते हैं, कि सोचते हैं कि इतना सब होने पर ये सब व्यर्थ है, सोचते हूँ मेरा जन्म इस अच्छे कुल में हुआ है, मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, मेरे इतना विद्वान हूँ मैं, इतना श्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, बचपन से मेरा रिकॉर्ड इतना हाई लेवल पे है। वो कहते हैं सारा चीज़ बेकार है जब तक गुरु कृपा नहीं होती है, इसलिए मैं भी ये सारे व्यर्थ जीवन को मैं अपने बर्बाद कर देता हूँ, उसको खत्म कर देता हूँ। तो ये निश्चय देखकर फिर वहाँ भाग गए गौर किशोर जी महाराज, और उनको उन्होंने दीक्षा दिया। तो ये स्थिति जो है ना, कि इतना सारा मतलब टोपियाँ जैसे कि मुकुट पहने रखे हैं, एक दूसरे से देखा जाए तो इतने सारे उपाधियाँ हैं, इतने सारे योग्यताएँ हैं, लेकिन एक गुरु एक संत के संग के बिना ये सारी योग्यताएँ अयोग्यताएँ हैं। ऐसे कहते हैं कि अगर सोने का मुकुट आपने पहना हुआ है और अगर आप सागर में गिर गए हो तो सोने का मुकुट जो आपने पहना हुआ है वो आपको सागर में डूबने के लिए सहायता करेगा सागर में और तेज़ी से आपको डुबाएगा। तो ये जो मुकुट का वर्णन है वो मुकुट मतलब ये है, हमारा पदवी, हमारा प्रभाव, हमारी विद्या, हमारा सौंदर्य, हमारा धन, हमारा अमुक और हमारा तमुक, ये सब वो सोने के मुकुट की तरह है। जब तक हमने उसको पहन रखा है वो भव सागर में हमको अधिक डुबाएगा, लेकिन वो मुकुट पहनने के बाद जो संतों के चरणों में हम शरणागति होती है तो वो मुकुट एकदम हल्का हो जाता है, हमको उल्टा वो तैराता है, वो सारी योग्यताएँ जो हमारी है वो बहुत परिपूर्ण हो जाती है, और भक्ति में सेवा में जन 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 के उद्धार में गुरु जी को प्रसन्न करने में बहुत सहायता करती है वो। तो ये ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी का जो मूड है जो भाव है उसको हमको समझना चाहिए कि वो इतने बड़े विद्वान ने एक अंगूठा छाप से दीक्षा लिया, क्या देख के दिया कि हृदय की जो अनुभूति होती है ये सारे बाहरी ज्ञान से भी बढ़कर होती है, और जो हृदय की अनुभूति जिसके हृदय में प्रकट है भगवान के विषय में वो व्यक्ति अंगूठा छाप भी होने पर सबसे प्रभावी व्यक्ति होता है, भगवान के बहुत करीब होता है, भगवान उसके होते हैं, वो भगवान के होते हैं। तो संत जो है उसको हम जब परखते हैं तो उसको संत को, और ये मेरे देश का है क्या, वो तो पंजाबी है क्या, मेरी भाषा बोलता है, वो पढ़ा लिखा है, धनवान है क्या, मैं बहुत धनवान हूँ, धनवान गुरु चाहिए, ब्राह्मण कुल तो होगा ना, होना है ना, तो हमारे गुरु जो है वो ब्राह्मण है ना जन्म से ऐसा हम लोग अगर पूछताछ करेंगे तो वो भागवत में कहा कि नारकीय बुद्धि है, वो नारकीय बुद्धि जो गुरु की जाति के ऊपर उसकी परख करता है, गुरु के भौतिक शरीर के व्यंग के ऊपर या व्यंग न होने के ऊपर या सुंदर होने पर उस पर परख करता है, उसके जाति भाषा देश जन्म के ऊपर उसके इतिहास के ऊपर उसका चयन करता है, वो व्यक्ति नरक में रहने के योग्य है, वो उस समय भी नरक में ही है, उसके लिए नरक और कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसकी चेतना ही उसकी नरक की स्थिति है। और जो मूर्ति को पत्थर समझता है, लकड़ी समझता है, पेंटिंग समझता है, वो भी नरक में है, नरक में जाएगा निश्चित आगे, आज भी नरक अनुभूति का नरक की अनुभूति में है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन जो है बहुत कीमती है। ये अभी क्यों वर्णन हम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति जो पुरंजन की है वो इतनी इतनी चिंताजनक है। हाँ, हम लोग अगर समझ सकते हैं कि नारद मुनि उनको घुमा फिरा के बता रहे हैं कि हाँ ये सब आप ही हो, आपकी कहानी बता रहा हूँ, और फाइनली ये हमको बता रहे हैं कि ये सब हमारी कहानी है। एक्चुअली पुरंजन तो निमित्त है उसके लिए, ये सारी हमारी कहानी का वर्णन हो रहा है, हम किस स्थिति में हैं, कैसे हमारी भोग प्रवृत्ति है, कैसे हम फंसे हुए हैं। आखिर में इसकी अनुभूति यही होनी चाहिए कथा पढ़ने के बाद में कि ये मेरी कहानी है, ये जो रथ है वो मैं हूँ, ये आत्मा मैं हूँ, ये रथ मेरा शरीर है, ये त्रिगुण मुझे बांध रहे हैं, और कभी ये पहिए पर धर्म के पहिए पर चल रहा हूँ, कभी ये पाप के पर चल रहा हूँ, कभी इस दिशा में जा रहा हूँ, उस दिशा में जा रहा हूँ, और शिकार कर रहा हूँ, मतलब भोग ले रहा हूँ सारे वस्तुओं का, और बार बार लगातार जन्म मृत्यु के चक्र में, कर्मों के बंधन में फंसते जा रहा हूँ। कब ये रथ कर्मों के दलदल में फंस जाएगा, हमारी यात्रा को समाप्त कर देगा, तो बता नहीं सकता है इसको। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, मनुष्य जन्म पहिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। कितना गहरा अनुभूति है, कितना कीमती मनुष्य जीवन जो हमें भगवान को मिला सकता है, उसको प्राप्त करने के बाद अगर हम सोचते हैं कि अरे जानवर के जीवन में जो इतनी बुद्धि नहीं थी भोग करने की, ना इंद्रियों में इतनी क्षमता और इतनी फैसिलिटी थी, देखो अभी शरीर में कितनी फैसिलिटी है, इतनी बुद्धि दी गई है, इतनी उच्च प्रकार से उच्च तरीके से हम भोग ले सकते हैं, अरे ये जन्म ना आएगा दोबारा, एंजॉय, बहुत समय है इसके अंदर, ये सोच जो है वो कितनी दुर्भाग्य सोच है। और ये सोच जो है कि हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, इस सोच को पकड़ के चलना चाहिए, और ये सोच केवल हमको भगवान के भक्ति दे सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सोच जो है इनकी, ये पश्चाताप की भावना है, पछता रहे हैं कि इतना सुंदर जन्म मिला मुझे, बचपन नींद में सोया, हाँ जवानी भोग में गवाया, बुढ़ापा देखकर रोया, है ये होने ही वाला है, इससे कोई बचता नहीं है, ना बचने वाला है। लेकिन ये सारे चीज़ होते हुए भी बीच में एक ऐसा सुविधा हमारे लिए उपलब्ध है, ये सारे चीज़ का दुख भोगते भोगते भी कि हम भगवान के रास्ते में प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो पछतावे की भावना भी जो है, ये भी हमको संत संघ में प्राप्त होती है कि आज आप जो कर रहे हैं, जिस पर आपको इतना गर्व है कि धनी आदमी को मिलो, बिजनेसमैन को मिलो, तो कितना गर्व होता है कि मैं कितना कर्तृत्ववान हूँ, मैं कितना कर्तव्यगार हूँ, देखो मैंने इतने समय में कितना प्रोग्रेस हासिल किया है, इतना प्रॉपर्टी बनाया है, इतना पिताजी का बिजनेस को 10 गुना कर दिया है, पिताजी के नाम को मैंने 10 गुना बढ़ाया है, और कितना मैं समाज कार्य करता हूँ, देखो मेरे बुद्धि से इतना कमाता हूँ, और इतना लोगों को मैं सहायता करता हूँ, मेरे ऊपर इतने लोग निर्भर है, इनको मैं जीवन दान भोजन दान करता हूँ मेरे कुशलता के कारण। वही चीज़ जब संत के संघ में आते हैं तो हमको लगता है कि मैं तो समय बर्बाद कर रहा हूँ। वो जिस पर आपको इतना गर्व है, इतना घमंड है, वो चीज़ तुरंत पछतावे में बदल जाती है कि मैं इतना समय बर्बाद किया इसके पीछे। ये आती राजा की भी कहानी ऐसी आती है, अपने पुत्र से यौवन लेकर वो बुढ़ापे तक, मतलब उसके बुढ़ापा तो नहीं था, यौवन ले लिया था, लेकिन जीवन के अंत तक उसने भोग लेने का प्रयास किया। अंतिम समय में क्या उसको अनुभूति हुई, अरे इतना समय बर्बाद किया भोग लेने के लिए, कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, आज तो हाथ में कुछ नहीं है, सारी अनुभूतियाँ जो मैंने ली भोग में वो तो उसी समय समाप्त हो गई, वो जिस समय ले रहा था उस समय समाप्त हो गई, वो जिस समय गुलाब जाम खाया उस समय गुलाब जाम खाने का आनंद भी समाप्त हो गया, थोड़ी देर के लिए जबान में और पेट में आनंद आया, उसके बाद में वो दूसरा खाए बिना उसका आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो कहाँ तक करते रहे इसको, तुरंत मिलने वाले केवल क्षणिक आनंद के पीछे कितनी देर भागते रहे, जब और कब आत्मा की तृप्ति होगी, ये अंतिम समय में होना ही है, क्योंकि जिस शरीर पर इतना विश्वास किया हमने, वो शरीर एक दिन आपको धोखा देने वाला है, छोड़ के जाने वाला है। जिस पर आपने इतना घमंड किया, इतना गर्व किया, उसकी शक्ति पर, उसके सौंदर्य पर, उसके भोग लेने की शक्ति पर इतना गर्व किया, उसके द्वारा जो भी कमाया वो भी आपको छोड़ के जाना होगा, तो आपको लगेगा कि मैंने जो मेरा समझा वो भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है, और जिसके आधार पर मैंने सब ये मेरा बनाया, प्रॉपर्टी, इतना समुदाय खड़ा कर दिया, वो सब भी छूटने वाला है। तो क्या सत्य क्या है फिर, क्या करना क्या है फिर, इतनी जिंदगी में मैंने इतना मेहनत किया लेकिन आखिर में क्या हुआ। यही स्टोरी वो अवंती ब्राह्मण के मन में भी आती है, अरे इतना मैंने जीवन में किया आखिर में क्या है मेरे हाथ में। लेकिन आखिर वाले लोगों को मिलना नहीं चाहते, हम सोचते कि उनको मिलना बहुत नेगेटिव है, बहुत डिप्रेसिंग है, ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो मरणासन्न है, जो दुखी है, जो परेशान है। हमेशा ऐसे लोगों को मिलते रहो जो सुखी है, उनके अंदर आपको सकारात्मक एनर्जी मिलेगी ऐसा आपको लगता है। लेकिन सत्य तो वही छुपा हुआ है जो आपको नकारात्मक लगता है, सत्य यही है। प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा, जब वो इतने बीमार थे वृंदावन में कि उनकी पलकें भी उठाना पड़ता था, प्रभुपाद जी महाराज देखो कौन आए हैं मिलने के लिए, देखो बलराम जी महाराज आए हैं, तो फिर वो पलकें उठाकर उनको दिखाते थे और पलकें छोड़ने के बाद पलकें गिर जाती थी, इतने कमज़ोर शरीर जो है वो केवल चर्म और हड्डी, उसके बिना बीच में कुछ नहीं, इतना कमज़ोर कि हाथ भी नहीं ला सकते थे। तो प्रभुपाद जी को जब सेवा करते थे भक्त लोग, तो प्रभुपाद जी उनको कहते थे ये मत सोचना कि ये तुम्हें नहीं होगा, ये मत सोचना कि ये तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। आप सब लोग अभी जवान हो, 20-25-30 साल के हो और मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, लेकिन ये सब स्थितियाँ आपके जीवन में आएगी, इसकी जागृति अभी से रखना। ऐसा नहीं कि देखा जाएगा जब हो जाएगा, अभी तो क्या है, हंसने खेलने के दिन है। ये हमारी कॉमन डायलॉग इंडिया में माता पिता लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे तो हंसने खेलने के दिन है, अभी क्या भजन कर रहा है तू। सब लोगों ने जो भक्त बने हैं युवा अवस्था में, तो सब लोगों को ये डायलॉग सबने सुनाया है, परिवार के सब लोगों ने सुनाया है, हंसने खेलने के दिन है। लेकिन ये हंसने खेलने के दिन, उसको हम जीवन का वसंत ऋतु कहते हैं, स्प्रिंग टाइम ऑफ द लाइफ, युवा अवस्था। तो वो युवा अवस्था में इतनी शक्ति होती है कि आप भगवान की सेवा में इतनी अच्छी सेवा कर सकते हो, आपका शरीर चुस्त है, आपकी बुद्धि चुस्त है, आपका मन चुस्त है, आपका संग अच्छा है, हर तरफ से एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। तो वो समय जो है वो भक्ति करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि जीवन का बेस्ट समय हम बेस्ट व्यक्ति को दे रहे हैं, भगवान को। और आम प्रचार हमको क्या होता है, क्या प्रचार मिलता है, अरे जो हंसने खेलने के दिन है, जब सब कुछ कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तब कर लेना, तभी वो स्थिति कैसी होगी, अरे जोड़ों में दर्द है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पेट में भी दर्द हो रहा है, शुगर बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल में भी दर्द होता है, चढ़ने को नहीं होता है आजकल। तो वो समय जो भगवान को देना चाहते हैं हम, कितने हम लोग स्वार्थी और कंजूस हैं, जो बेस्ट है वो अपने जेब में रख लिया, उसका बेस्ट टाइम में भोग ले लिया, और जो अभी ख़राब होने लगा है, जैसे होता है ना वो कभी कभी, वो हमारे बचपन में कहानी आती थी कि कोई ऐसा रास्ते पर कुछ बेचने को बैठा है और अचानक तूफान आता है और वो सब उड़ जाता है, तो बोलता है कृष्णार्पणमस्तु, है ना। तो अभी वो जाहिर है मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जाहिर है तो वह भगवान को अर्पण कर लेते। ये हमारी प्रवृत्ति है, जब तक मेरे कब्जे में है तो मैं उसको भोग लेना चाहता हूँ, जब वो जाहिर आए तो अभी बोलते मैं त्याग कर रहा हूँ उसका। कितना ढोंगी त्याग है हमारा वो। तो वैसे ही जब शरीर से हमको ज़्यादा आनंद नहीं मिलेगा, मिल रहा है तो अभी समझो बच्चे भी भाव नहीं देते, ज़्यादा कीमत नहीं देते, मूल्य देते नहीं है, और रिटायर भी हो चुके हैं, शरीर में दर्द भी है, परावलंबी हो गए हैं, तो अभी हरी हरी करके जाके भागवत कथा में बैठ जाते, है ना। भारत में कैसी स्थिति है, एक हमारा संस्था जो है छोड़ के, भारत में स्थिति ऐसी, कहीं भी भागवत संस्था कथा होती है तो आपको अधिकतर बूढ़े लोग बैठे मिलते हैं, और वो भी वहाँ पर जाके सोते हैं बैठ के, बार बार उनको जगाया जाता है, उठो सुनो कुछ भागवत कथा चल रही है। ये हमारे जीवन में हो सकता है, याद रखना। हाँ प्लीज़ डोंट थिंक दैट मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, मुझे ये कहना ये है कि अगर हम अभी जब शरीर चुस्त है तब तक भगवान की सेवा में नहीं अपने को अर्पण करेंगे, हमारी भी स्थिति वही होगी, हमको देखिए भी लोगों को बोर हो जाएगा, क्या व्यक्ति है अभी, एक एक मिनट में सो जाता है, एक एक मंत्र बोलने के बाद सो जाता है, हाँ ये सारी अवस्था होने वाली है। लेकिन आज अगर हम अगर ठीक अवस्था में है और आज अगर हम संतों के आदेश के अनुसार अपने आप को अच्छी तरह से अपने से समय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो आपकी आदत आज जो बनी हुई है वही आपको बुढ़ापे में काम आएगी। तब बुढ़ापे में आपको जब करते हुए नींद नहीं आएगी, जब आपको आज नहीं आ रही तो तब नहीं आएगी। आपके इंद्रियों को शुरुआत से आपने जो आदत लगा के रखी है वही आपको अंतिम समय काम आएगी। बुढ़ापे की अवस्था में नई आदत डालने का प्रयास मत करना, उसमें आपको यश नहीं मिलेगा। बुढ़ापे के समय कोई नई ट्रिक हम सीख नहीं सकते, यू कैनॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। सर्कस में हमें हमेशा जवान पिल्ला लेते हैं, उसको खाली ट्रिक सिखा देते हैं, फिर वो कूदता है, आग में से कूदता है, उल्टा सुलटा भी कूदता है। तो इसलिए हमारे को सोचना जरूरी है कि आज जो स्थिति है समझो हम लोग बड़े देर से भक्त बने, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय जब बन रहे हैं तभी अगर हमारी इंद्रियों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे हम और अच्छे भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसके आगे से जो हमारी आदतें बनी हुई है इंद्रियों की वही आदतें आपको एंड तक साथ देंगी। अगर आज हम जप करते वक्त सो रहे हैं और हमको नींद आती है, निश्चित रूप से समझना कि 80 साल की उम्र में आप जिएंगे तब भी आप सोते रहेंगे। अगर आज आपको जप करते समय व्हाट्सएप देखने की आदत है तो आप निश्चित रूप से समझना कि आगे भी आप वही करते रहेंगे और कोई इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आएगा उसके चक्र में फंस जाएंगे आप। मतलब क्या, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। आज अगर आपको विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन की आदत है तो औजार कुछ भी होगा डिस्ट्रैक्शन का, कभी बच्चा होगा, कभी कुकिंग होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ और कुछ होगा, लेकिन विक्षेप की आदत है तो एंड में भी विक्षेप ही रहेगा। जब भगवान को समय मिलने का आएगा तो भी आपका मन किसी और चीज़ में व्यस्त रहेगा। और आज आपको आलस्य है तभी भी आपको आलस्य आएगा, इसलिए आज सतर्क रहो कि आज अपने आप को देखना चाहिए हमको कि हम किस स्थिति में हैं। हमारी जो जो आध्यात्मिक जीवन की जो मूलभूत गतिविधियां हैं जैसे कि जप है, नियम का पालन है, एकादशी व्रत है, सत्संग है, दर्शन है, इसमें हमको आज उत्साह नहीं है तो बिल्कुल उम्मीद मत करना कि कल उत्साह रहेगा, कल संडे है कल उत्साह रहेगा ये सोचना बोलकर बेकार की बात है। आज अगर आपके हाथ में कुछ है और आपको कुछ करने की इच्छा है तो ही वो आपको कल मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भक्त बहुत व्यस्त रहते हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं कि ये जो इतने मैंने किताबें खरीद के रखी है ना एक बार मुझे रिटायर होने दो, उसके बाद में मैं 8 घंटे रोज किताब पढ़ूंगा, इतना मेरी इच्छा है, आज मुझे 15 मिनट पढ़ने को मौका नहीं मिलता है, मैं एक बार काम मेरा समाप्त हो जाएगा ना मेरे पूंजी मुझे इकट्ठा करूंगा फिर देखना मैं 8 घंटे पढ़ूंगा उसको। लेकिन मैंने कई रिटायर्ड हुए लोगों को देखा है जब वो कोई किताब खोलते हैं तो 15 मिनट में सो जाते हैं, क्योंकि आपको जो रिटायर होने के बाद में करना है उसकी प्रैक्टिस आपको आज करनी है। भले ही मैराथन में आपको 22 किलोमीटर दौड़ना है तो रोज आदमी 22 किलोमीटर दौड़ता नहीं है, रोज 2 किलोमीटर दौड़ता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है, प्रैक्टिस करते रहता है वो, कभी कभी 15 दिन में एक बार 22 किलोमीटर दौड़ता है। लेकिन रोज जब 2 किलोमीटर दौड़ता है तो आगे वो उम्मीद कर सकता है कि मैं 22 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ मैराथन में। उसी तरह से अगर आपको भगवान के ग्रंथों का अध्ययन में रुचि पैदा करनी है तो आज पैदा करो, आज उसको निर्माण करो, तब आपको कल काम आएंगे वो। कोई भी अगर दिव्य चीज़ को आपको ग्रहण करने की इच्छा है तो वो आज करने का आप प्रयास शुरू करो, जब आपकी मति, आपका मन, आपके शरीर स्वस्थ अवस्था में है आज उसको शुरू करना चाहिए, नहीं तो फिर हरी हरी विफले जन्म गोवाइनू ये गाना है सबको, हाँ भले ये आपको नहीं भी मालूम होगा लेकिन गीत तो वही गाएंगे आप, हम सब लोग मिलकर वही गीत गाएंगे, हरी हरी विफले जन्म गोवाइनू मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जीवन में होकर भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, जब गंभीरता के समय लेने का था तभी लाइन नहीं लिया उसको, सब समय गंवा दिया, अभी चाहते हुए भी नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी का उदाहरण है, मेरे पिताजी ने मुझे जब मैं नया नया विद्यार्थी दशा में आया था हरे कृष्णा में तो बहुत विरोध किया था उन्होंने, यही बात हंसने खेलने की बात भी की थी और ये भी कहा था कि ये समय नहीं है अभी तुम्हारे पास, कुछ तुमने कुछ कमाया नहीं है, तुमने कुछ प्राप्ति नहीं किया है, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, कर्तव्य दिखाओ, 100 रुपया कमाओ फिर 99 रुपीज़ डोनेशन करो, लेकिन 100 तो कमाओ पहले। और ये क्यों जाते हो फॉरेनर की संस्था में, ये हमारे समाज में भी कितने अच्छे अच्छे गुरु हैं, क्यों जाते हो विदेशी गुरु के पास ऐसे कई प्रकार की बातें बताई थी और बहुत मुझे परावृत्त करने का प्रयास किया था और थोड़ा बहुत हमारा भी संघर्ष होता रहा उसके लिए, लेकिन भगवान की दया से हम टिके रहे, भक्तों की दया से। और फिर काफ़ी साल गुजर गए, फिर वो भी रिटायर हो गए और वो घर में रहे और बीमार हो गए, उनको बहुत भयंकर रोग भी हो गया और मैं डॉक्टर था तो मेरे घर पे वो आ गए और हमने उनको किसके घर में आते नहीं थे वो, लेकिन बीमार हो गए तो वे आए और 6 महीना मेरे घर पे रहे बहुत विद्ध अवस्था में यानी कि रोग की अवस्था में। तब उनको बहुत भक्त लोग मिलने आते थे, डॉक्टर भक्त मिलने आते थे उनको, और कभी मिलते थे हमारे घर में मंगल आरती होती थी, भागवत होता था तो उसमें सब लोग इकट्ठा होते थे मीरा रोड में, तब वो उनको भी मिलते थे अंगले कमरे में और सब लोग उनको मेरे पिताजी से प्रणाम करके जाते थे। तो उस समय वो मुझे एक दिन बोले, उनके मृत्यु होने के कुछ समय की पहले की बात है, दूर की बात नहीं, उन्होंने मुझे एक बार बैठ के प्राइवेट में मुझसे एक बात किया, देखो सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, हाँ उन्होंने कहा बेटा मैंने तुमको भक्ति में आने के लिए बहुत विरोध किया, यह कहकर कि तुम जवान हो, तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, तुमको भी बहुत कुछ करना है, उसके बाद में फिर आपको ये करना चाहिए वगैरह वगैरह। और तब मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मतलब पिताजी व्यस्त हूँ इनको संभालने में, बड़ा करने में, तो मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो फिर ध्यान करूँगा, क्योंकि वो भी किसी पंथ को फॉलो करते थे। तो वो सोचते थे कि मैं जब रिटायर हो जाऊँगा ना, इनके सब ड्यूटी से, कर्तव्य से फ्री हो जाऊँगा, तो मैं अच्छी तरह ध्यान करूँगा। लेकिन बेटा मुझे आपको बताना है, दिल से बताना है। देखो बहुत ऐसे वो स्ट्रांग व्यक्ति थे, उनके लिए ऐसी दम्रता की बातें करना बहुत, मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत कठिन बात थी उनके लिए एक्चुअली। फिर भी उन्होंने कहा, बेटा तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जिस उम्र में कर रहे हो वो भी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी उम्र में जब ये हो जाएगी तब मैं ये सब करूँगा, लेकिन मुझसे अभी नहीं हो रहा है बिल्कुल, मेरा मन ही नहीं लगता है। इतनी समस्याएं मेरे सामने आती है, पारिवारिक समस्याएं हैं, बच्चों के विषय में है, धन के विषय में है, मेरा धन सब लॉस हो गया, उसकी चिंता मुझे है, मेरा शरीर जो इतना वो ना, मेरे पिताजी एक समय 250 नमस्कार करते थे दंड, और इतनी बकेट जो है वो पसीने से भरते थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। रोज 15 किलोमीटर दौड़ते थे वो एक जगह जाने के लिए, वहाँ पर काम करके फिर दौड़ के घर पे आते थे युवा अवस्था में, इतने स्ट्रांग व्यक्ति थे। बोल रहे आज मुझे इतना तकलीफ है, छाती में रोग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये फलाना हार्ट डिसीज़ है, मेरा लंग खराब हो गया है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और दिन रात मुझे इसकी विवंचना बनी रहती है कि कैसे होगा। और ये सब विवंचना में जो मानसिक भी है, भावनिक भी है, सामाजिक भी है, शारीरिक भी है, हर प्रकार से है, कहाँ भगवान का ध्यान मेरे तो विचार में भी नहीं आता है। तो तुम लोगों को देखता हूँ कुछ करते हुए तो मुझे आनंद आता है, और फिर यकीन होता है कि आप लोग जिस उम्र में कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बस करते रहना, इसको छोड़ना मत। ये जो उनके शब्द थे वो उनके लिए लाभदायी लाभदायी नहीं थे, क्योंकि वो भक्तों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, भक्तों को मिलके ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो अभी आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अनन्य कृपा होगी तो कुछ हो जाएगा उनका, लेकिन खुद करने की जो इच्छा थी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र अभी रॉन्ग है ना, समय जो था वो गया निकल के, समय कभी लौट के नहीं आएगा वापस। कितना भी आप पछतावा करोगे, ऐसे गाओगे ना गीत बैठ के, झनिया सुनिया विष खाइनू, खाली अभी सभी उसका परिणाम होना ही है, वो विष का अभी उतारा कैसे करेंगे, कौन सा एंटीडोट वेनम लेके आएंगे, वेनम एंटी वेनम वैक्सीन लेके आएंगे, अभी विष गया है अंदर, उसका परिणाम होना ही है, थोड़ा बहुत कम होगा यहाँ वहाँ से, लेकिन जो पुराना विष आपने लेते रहे उसका परिणाम होगा। और हम लोग अभी धोती कुर्ता पहन के, कंठी पहन के भक्त बने हुए हैं, हम भी उससे मुक्त नहीं है, हम भी अपने आप को धोखा दे सकते हैं ये ड्रेस पहनकर कि हम बड़े भक्त बने हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या लड्डू फूट रहे हैं हमको पता नहीं है, तो भगवान को पता है। और हम भी अपने आप को चीटिंग कर सकते हैं ये भक्तों का भेष पहनकर भी, तो अपने आप को टटोलना है। हम लोग वृंदावन में रह रहे हैं, हम लोग इधर बैठ के जप कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, झूले का दर्शन कर रहे हैं, उत्सव को भाग ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये कन्विक्शन नहीं है कि अभी हमको भक्ति में गंभीर होना है, अगर ये विश्वास हमारे अंदर नहीं है तो हम भी जाके पछताएंगे आगे जाकर, क्योंकि हमें भी कई रोग होंगे हमारे कर्मों के अनुसार, हम कहाँ मुक्त होने वाले। ऐसा नहीं कि अभी हम 16 माला करेंगे, 25 माला करेंगे तो हमको आगे रोग नहीं होगा हमारा शरीर जर्जर नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा, सब होगा। आज हमको तैयारी करनी है, ये सब होने के पहले हमको अपना मामला फिट करना है, तब जाकर ये पछतावा जो है, ये पछतावा बहुत हेल्दी है, समझो ये पछतावा होता भी है तो अगले जन्म में आप भगवान आपको मौका देंगे। हाँ, पछतावा करना बहुत ज़रूरी है, पछतावा एक बहुत ज़रूरी भावना है, पश्चाताप होना बहुत आवश्यक है, पश्चाताप होने पर भगवान की कृपा को हम आकर्षित करते हैं, लेकिन समय न होने के कारण भगवान आपको और एक मौका देंगे, अच्छी जगह देंगे, अच्छे घर में देंगे, और आप अपने पछतावे को फिर कार्य में ला सकते हैं कि हाँ मैं पछतावा जो आप, वो तो अनुभूति हृदय में रहती है अगले जन्म में भी, और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तो अगला जीवन सुधर जाएगा, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। लेकिन ये पछतावा होने तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, पछतावे का रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको सही समय पर भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ है और अच्छा मार्गदर्शन मिला है, अच्छी स्थितियाँ, अच्छी एटमॉस्फेयर प्राप्त हो गया है, तो अभी करना है हमको ये। नरोत्तम दास का वेट नहीं करना है कि ये आपका भजन मुझे गाना है एक दिन अभी गाना अच्छा है, समय है अपने पास में उसके ऊपर काम करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न होगा, अगर कोई टिप्पणी करनी है तो आपका स्वागत है। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। सबको झूलन यात्रा की शुभकामना, क्योंकि वातावरण बहुत भक्ति के लिए अनुकूल है। भगवान झूला झूल रहे हैं सब जगह पर और सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है, तो उसका लाभ लेकर अपनी भक्ति में वृद्धि करना चाहिए। उस लीलाओं का भोग करने की जरूरत नहीं है, उन लीलाओं के दर्शन करने से अपने भक्ति की वृद्धि हो सकती है, तो बढ़िया है। सेवा छोड़कर भागना नहीं है, लेकिन सेवा करने के पश्चात समय मिलता है, जरूर इसका दर्शन करना चाहिए और इनका लाभ अपने भक्ति में, अपनी सेवा की भावना में वृद्धि करने में, प्रगति करने में होना चाहिए। झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय हो।